गाथा, रूप वही, रूप नया।
गाथा में आप सुन रहे हैं मनीषा कुलश्रेष्ठ की लिखी कहानी एक सांवली सी परछाई। सच कहूं तो वो एक सांवली परछाई ही तो थी, तमाम खूबसूरत चेहरों के पीछे सहमी सी एक छिपती छुपाती परछाई। वह खूबसूरत लड़कियों से चहकता घर मेरी सहेली फरजाना का था। जब मैंने इसे अपनी क्लास में देखा था तो देखती रह गई थी। छूने से मैला होता गोरा रंग और टिपिकल खानदानी मुस्लिम नाक नक्श। एक तो छोटा कस्बा और साइंस पढ़ने के लिए लड़कों के स्कूल में जाने वाली एक मुस्लिम लड़की। यूं हम चार लड़कियां थे जो गर्ल्स स्कूल में साइंस फैकल्टी के अभाव में बॉयज स्कूल में नवी क्लास में दाखिल हुई थी। पर हम तीन लड़कियां उस कस्बे में बाहर से ट्रांसफ़र होकर आए अधिकारियों की बेटियां थीं। नमिता के पापा उस कस्बे के SDM थे, नीरजा के पापा इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड के XEN और मेरी मम्मी गर्ल्स स्कूल की प्रिंसिपल थी और पापा BDO। यूं फरजाना के पापा भी जिले के लीडिंग क्रिमिनल लॉयर थे, पर एक तो यह राजस्थान का मुस्लिम बहुल कस्बा उनका स्थायी निवास था, फिर उस समय भी जहां गिनी चुनी लड़कियां स्कूल में भी बुर्का पहनकर जाती थीं, ऐसे में फरजाना ही जानती होगी कि उसने अपने पापा से कितनी ज़िद और मिन्नतें की होंगी हमारे साथ बॉयज़ स्कूल में एडमिशन लेने की। हालांकि उसकी कुछ बड़ी बहनें मम्मी के स्कूल से तब भी पढ़ रही थीं और वे बुर्का पहन कर आया जाया करती थी। न जाने किस तरह से फरजाना ने पापा को मनाया होगा कि ना तो वो बुर्का पहनेगी और साइंस भी पढ़ेगी, वो भी लड़कों के स्कूल में। अम्मी की तो चलती ही कहाँ, फरजाना की बहनों की गिनती याद नहीं। पर दो बे इंतहा खूबसूरत बहनें अंजुम दीदी और निखत दीदी मम्मी के स्कूल से 10वीं की परीक्षा दे रही थीं। साथ पढ़ने की वजह से और हमारे स्कूल से उसका घर पास होने की वजह से हम उसके घर जाने आने लगे। तब पता चला कि और भी बहनें हैं फरजाना की। उन दोनों दीदियों से बड़ी एक दीदी की शादी हो चुकी है। एक फरजाना से ज़रा बड़ी बहन शाजिया को देखकर तो मेरे मुंह से निकल ही गया, हाय फर्जी, पहले तुझे देखा तो तू खूबसूरत लगी और फिर अंजुम और निखत दीदी तुझसे भी सुंदर लगी, अब ये शाजिया, माय गॉड, तुम सब कुछ भी नहीं इसके आगे, और कितनी सुंदर बहनों से मिलवाएगी। शाजिया का पढ़ने में ज़रा मन न था। 5वीं के बाद अम्मी से कह दिया नहीं पढ़ना, अम्मी भी खुश बेटी भी खुश। मगर शाजिया का कमाल देखते जरदोजी के गरारे कुर्ते काटने में और सुंदरता तो जैसे तराशी हुई, और तमाम उपमाओं को लगा दो उसके सौंदर्य वर्णन में तो कम पड़े। हल्की भूरी बनी आँखें, भंवरे सी पलखें, तीखी नाक, तराशे गुलाबी होंठ, और सच मानो ये कल्पना नहीं। और भी दो छोटी बहनें थीं फरजाना की, वसीमा और गुल। गुल तो तब आंटी की गोद में ही थी, ये छुटकियाँ भी कम न थीं। आखिर बेहद हैंडसम वकील साहब और 40 की उम्र में भी गजब की खूबसूरत आंटी की बेटियाँ थीं। दो बेटे गुल से ज़रा बड़े, सुहैल और तुफैल, ये भी माशाअल्लाह गोरे और सुंदर। अक्सर इंटरवल में हम वहीं होते, वकील साहब की हवेली में, कभी आलू के मुगलई पराठे खाते, कभी जर्दा तो कभी सेवैयाँ। मुझे और नमिता को तो गोश्त खाने में भी गुरेज न था, पर हमारे साथ होती थी ब्राह्मणी नीरजा। आज लंदन में डॉक्टर है, भले ही अब हैम वैम खा लेती होगी। कितने ही दिन तो इस खूबसूरत खानदान में आते जाते हो गए और अंजुम दीदी का निकाह तय हो गया। घर में माहौल बदल गया, रेशमी शरारे गरारे सिले जाने लगे, दुपट्टों पर सुंदर मुकेश और सुनहरी लैसों और मोतियों का काम शुरू हो गया। बीच बीच में गीत भी होते, उबटन लगता, बेला मोतिया के गजरों का ढेर बटता, महकता। फरजाना पढ़ने के लिए इतने बड़े भव्य घर में भी तन्हाई ना मिल पाने के कारण चिढ़ जाती। उसे बस डॉक्टर बनना था, बाकी सब व्यर्थ लगता था। पर मुझे बहुत आकर्षित करता वह माहौल। फरजाना का घर हमारे घर से दूर ना था, उस पर अंजुम दीदी मम्मी की स्टूडेंट थी, सो हर रस्म पर मैं वहीं होती। शाजिया से मेरी बेहद पटती, उसका खूबसूरत लहजे में बोलना, छेड़ना, रुमानी बातें करना मुझे भाता। हम दोनों ही के गीतों में नाचने में खूब रुचि रहती, फरजाना चढ़ जाती। ऐसे ही एक दिन शादी की पहले की रस्मों के बीच चहकते गीतों और महकते उपटनों और सरसराते शरारों को छोड़ मैं पानी पीने उनकी रसोई तक गई तो वहाँ एक लंबी सांवली लड़की रस्म के बाद बांटी जाने वाली केसरिया बूंदी दोनों में रख रही थी। रसोई की गर्मी में सांवला चेहरा तप आया था। वो मुस्कुराई, आओ मनीषा, आप मुझे जानती हैं? हाँ बेशक, अक्सर तो आती हो तुम। आप? फरजाना की बड़ी बहन हूँ। तभी नाकनक्श में वही चिपरिचित घुला घुला सा लावण्य मुरझाए चेहरे में स्पष्ट था। दो लंबी चोटियाँ, सादा सा हल्का नीला शलवार कुर्ता, छरहरी देह पे कस के लपेटा सफ़ेद दुपट्टा। दीदी, पानी पीना था। बाद में गीतों में बैठने पर याद आया, इस सांवली लड़की को देखा तो है, बस एक परछाई सा, बस जरा सा। रसोई से निकल दस्तरखान तक जाना, वहाँ से रसोई और ढेरों कमरों के बीच किसी कमरे में आते जाते, हम अपनी किशोर वय अल्लड़ता में कब उस ओर ध्यान देते। फरजाना से कहा कि तूने बताया नहीं? हाँ, वो अंजुम दीदी से बड़ी हैं, फिरदौस दीदी, पापा की यानी मेरी दूसरी अम्मी की बेटी। अलग रहती थी कहीं, अम्मी नहीं रही तो यहाँ आ गई। इनकी शादी? कोई पैगाम ही नहीं आता। ऐसी तो कहीं बदसूरत भी नहीं, नाक नक्श कितने सुंदर हैं, लंबे बाल, लंबा कद, तुम सबकी हाइट तो एवरेज सी है, बस गोरी ही तो नहीं तुम सबकी तरह, तुम्हारे पापा ही नहीं ढूंढते होंगे। नहीं, हमारे यहाँ पैगाम आए तभी शादी होती है, और नहीं आए तो बैठे रहो। आते हैं, अपने अपने लेवल के सबको आते हैं। पूरी शादी में वो सांवला चेहरा जुटा रहा बेजा कामों में। सुंदर बहनें खिलखिलाती, रेशमी सरारों में सजी, दुल्हन को इधर से उधर ले जाती सजाती। अंजुम दीदी के निकाह में बड़ा मज़ा आया। पहली बार मुस्लिम विवाह की सारी रस्में देखी, दूल्हे का इकरार, फिर मेहर की रकम तय होना, दुल्हन के इकरार के वक्त दुल्हन और उसकी माँ मौसियों का रोना और दुल्हन का धीमा सा शर्मीला हाँ कहना, फिर दूल्हे का जूठा लड्डू दुल्हन को खिलाना, मर्दों और औरतों का एकदम अलग अलग इंतज़ाम होना। अंजुम दीदी की शादी में गुल बस 10 महीनों की थी। सबसे छोटी साली करके उसे दूल्हा भाई की गोद में डाल दिया गया था, पर फिरदौस उन खूबसूरत गोरी बहनों की सांवली परछाई बनी, पीछे कहीं से रस्में देख लेती। कपड़ों की सादगी भी वही थी, ऐन निकाह के दिन भी हल्के हरे सादा साटन के गरारे पर वही सफ़ेद दुपट्टा डाले, बस दहेज का संदूक सजाती, अम्मी का हुक्म बजाती, भटकती रहती। ऐसे ही निखत दीदी का भी निकाह हो गया। नकचढ़ी शाजिया के बेपनाह हुस्न के चलते हजार पैगाम आए और उसका निकाह भी एक अमीर खानदानी घर के आईएस बेटे से तय हो गया। फरजाना चिढ़ कर कहती, न जाने क्या करेगी, बस सुंदरता ही है, दिमाग देखो तो ठस। उस दिन जब देखने आया तो डाइनिंग टेबल पर खाना चल रहा था, उसने बोला कि कैरी ऑन, तो कमबख्त कच्ची कैरी ही उठा लाई। न जाने कैसे चलेगी ये बेमेल शादी, पर चली, खूब चली। एक साल बाद ही शाजिया को देखा तो पहचान न सकी। कटे बाल, स्लीवलेस ब्लाउज, यदा कदा बाल झटक कर बोले गए अंग्रेजी के जुमले, दूल्हा भाई अलग 100 जान से निछावर। कमी क्या थी, अदा थी, हुस्न था, बस इल्म ही तो कम था। लाख चाह कर फरजाना डॉक्टर न बन सकी, हम तो पहले ही पढ़ाई में सीरियस थे ही नहीं। नीरजा का पहली बार में ही PMT में सिलेक्शन हो गया। नमिता का तो हम 10वीं में थे तभी ट्रांसफ़र हो गया था। फरजाना और मैंने BSc साथ किया, वो भी पास के शहर में डेली अप डाउन करके। फाइनल करते करते उसका निकाह डॉक्टर से होना तय हुआ। फिर वही सरगर्मी, बहनें अपने बाल बच्चे लिए कई दिन पहले आ जुटी, फिर वही कुर्तों दुपट्टों पे कढ़ाई शुरू हुई, जर्दा पकता, उपटन घुलता। इस सबसे अब मैं ऊबने लगी थी। एक दिन यूं ही फरजाना के कमरे में चमेली की लतर से ढकी खिड़की के पास पड़े बिस्तर पर पास पास लेट कर उससे अतरंग बातें कर रही थी। उस दिन वसीम कॉलेज में मिलने आया तो तू कहाँ मर गई थी, चेहरा देखा होता बेचारे का, क्या करती। जिस दिन तय किया था उनसे कॉलेज में मिलना, उसी दिन ये हंगामा हो गया। क्या बता ना, पता चल गया क्या? नहीं, मेरी बात नहीं, फिरदौस की बात खुल गई। क्या? अरे चल छोड़ ना। नहीं बता ना, तू इडियट, क्या अब तक मुझ पे भरोसा नहीं? और तेरे घर की बात मेरे घर की बात है। वो हमारी हवेली के बगल में एक छोटा सा घर है ना, खपरेल वाला, गफ्फार मास्टर का। हाँ, उनका एक भतीजा है असलम, वो भी मास्टर है, यहीं रह रहा था। हमारी रसोई की खिड़की उधर को खुलती थी, न जाने कब से फिरदौस और असलम। फिर एक दिन असलम घर आ गया पैगाम लेकर। पापा पहले समझे नहीं, सोचा मेरे लिए आया है, उस पर बिगड़ गए। तब उसने फिरदौस का नाम लिया। तब तक सुहेल ने भी शिकायत की, अक्सर फिरदौस से बात करते देखा है। फिर उसे तो डांटा ही, बेचारी फिरदौस को जो अम्मी और दादी ने खरी खरी सुनाई कि बस। देखा मैंने भी था दोनों को बातें करते हुए, पर उसके उदास चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान ने मुझे उसकी शिकायत करने से हमेशा रोका। क्या करूं मनी, मेरा ही शादी करने का मन नहीं करता जब उसे अपनी शादी में भी वही सब करते देखती हूँ जो उसने तमाम बहनों की शादी में किया, तो जी भर आता है। शुरू से ही तो वह ऐसी ही रही है, खामोश और काम में मसरूफ। शाजिया को तो वह फूटी आंख नहीं सुहाती थी। हम दूसरी बहनें भी अपने में मगन रहीं, उससे काम तो जम के लिया, बदले में प्यार का एक बोल नहीं दिया। असलम क्या बुरा है? नहीं, भला आदमी है, पर विडोअर है, उस पर हमारा और उनका स्तर अलग है। अब फिरदौस भी तो 30 पार कर गई है, तो क्या हुआ जब इसमें फिरदौस दीदी खुश हैं, तो जब पैगाम भी ना आए ना अंकल कोई रिश्ता देखें तो क्या करे दीदी। असलम क्या बुरा आदमी है? बहुत शरीफ है, जब देखा तहजीब से बात करते ही देखा है। तो तू कुछ करना। क्या मैं कर भी क्या सकती हूँ? अपने लिए लड़ती आई है पापा से, पहले बुर्का पहन के स्कूल न जाने के लिए, साइंस लेके लड़कों वाले स्कूल में पढ़ने के लिए, अब थोड़ा फिरदौस दीदी के लिए लड़ ले। ठीक कह रही है तू, और क्या, एक अपनी ही अभागी बहन की जिंदगी के लिए तू इतना तो कर ही सकती है। हाँ मनु, मुझे अब याद आता है कितनी ही बार मैंने एग्जाम्स में उसे चाय बना देने के लिए उठाया, उसने कभी बुरा नहीं माना और बना के दे दी। तेरा कहना सही है, अब जब मैं घर में बड़ी रह गई हूँ वो मेरी बात नहीं टालेंगे। मैं घर चली आई। फरजाना ने न जाने कैसी वकालत की कि जब मुझे कार्ड मिला शादी का तो उसमें दोनों बहनों का नाम था। आखिर बेटी किसकी थी, एक नामी वकील की। फरजाना वेड्स वसीम और फिरदौस वेड्स असलम। शादियाँ हुई उस हवेली की तमाम शान शौकत के और उन्हीं प्यारी रस्मों के साथ। फरजाना की खुशी दोहरी थी, वह चहक रही थी, वसीम मियाँ बड़े बातूनी निकले। असलम और फिरदौस दीदी दोनों सहमे तो थे, पर खुशी उनकी आंखों की कोरों में छलक रही थी। फरजाना विदाई के वक्त रस्मन आके गले मिली तो मैंने कहा, कमबख्त झूठ मूठ ही सही, रो तो दे, इतनी दूर बॉम्बे जा रही है। वह फुसफुसाई, क्यों रो, रोने की बात ही क्या है, गाँव से निकल कर शहर जा रही हूँ। उधर पास ही सटे घर में विदा होकर जा रही फिरदौस दीदी जो जार जार रोई है कि बस मुझे लगा बरसों की बात बात पे दबाई रुलाई अब फूटी है। मेरे भी गले लगी। वसीम मियाँ ने दहेज का सामान इसलिए ले जाने से इनकार कर दिया कि बॉम्बे में घर छोटे होते हैं, इनकन्वीनियंस होगी। असलम मियाँ ने कहा कि यह उन्होंने पहले ही कहा था कि वे फिरदौस को बस दुल्हन के जोड़े में ले जाना चाहते हैं, दहेज उनके उसूलों के खिलाफ बात है। फरजाना से फिर नहीं मिल सकी, वो शारजा चली गई। पर उसकी सांवली परछाई सी फिरदौस दीदी से मैं अपनी शादी के बाद एक बार फिर मिली। मम्मी के ऑफिस में, जब मम्मी एजुकेशन में डिप्टी डायरेक्टर थी। अरे मनीषा दीदी, आप यहाँ? हाँ, आंटी से तबादले की बात करने आई थी। किसके तबादले की? अपने। आप? हाँ, मैं टीचर हूँ ना गर्ल्स स्कूल में, वहीं पर अब प्रमोशन है और मैं कहीं और नहीं जाना चाहती। आपने पढ़ाई कब की? 12वीं तो फरजाना के कहने पर प्राइवेट किया था, वहीं शादी के बाद इन्होंने पढ़ाया तो बीएड। और बीए और बीएड कर लिया करस्पोंडेंस से। मैं वही सांवली उदास परछाई ढूंढ रही थी जो मुझे अब ढूंढे नहीं मिल रही थी। अभी आपने सुनी मनीषा कुलश्रेष्ठ की लिखी कहानी एक सांवली सी परछाई। गाथा में इसे आपके लिए प्रस्तुत किया पूजा श्रीवास्तव ने।